आज हम जापान की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा का विस्तार। शोगुन सरकार के शासनकाल में ही अनेक जापानी विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिए विविध पश्चात देशों में जाना आरंभ कर दिया था। इस समय यद्यपि जापानी लोगों के लिए विदेश यात्रा निषिद्ध थी, तदपि कानून का उल्लंघन कर अनेक जापानी युवक अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए विदेशों में जाने शुरू हो गए थे। शोगुन सरकार के पतन और सम्राट द्वारा राज शक्ति को अपने हाथों में ले लेने के बाद जापानी विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में जाने लगे। इन विद्यार्थियों का यह उद्देश्य था कि पाश्चात्य देशों ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ उन्नति पिछले एक सदी के काल में की है, उस सब को सीखकर अपने देश में उसका उपयोग आरंभ करें। अमेरिका और यूरोप के उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों जापानी विद्यार्थी प्रविष्ट हुए और उन्होंने अपने देश को लौटकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का आरंभ किया। अब तक जापान में प्रधानतया प्राचीन साहित्य और धर्म ग्रंथों की ही शिक्षा दी जाती थी। अब उनके साथ साथ नए ज्ञान विज्ञान का भी प्रवेश हुआ। जापानी स्कूलों में पाश्चात्य भाषाओं, विशेषतः इंग्लिश की भी पढ़ाई शुरू की गई और कुछ ही समय में जापान के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के समकक्ष हो गए। 1872 में जापान में बाधित शिक्षा की पद्धति को जारी किया गया। इसके लिए प्रत्येक नगर व प्रत्येक गांव में प्रारंभिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। प्रत्येक बालक व बालिका के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वह कम से कम 4 साल तक स्कूल में बाकायदा शिक्षा ग्रहण करे। बाद में इस काल को बढ़ाकर 4 साल के स्थान पर 6 साल कर दिया गया। जापान के स्कूलों में केवल पढ़ाई ही नहीं होती थी, अपितु चरित्र के निर्माण पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। देश के प्रति प्रेम और सम्राट के प्रति भक्ति की शिक्षा सब बच्चों को दी जाती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि प्रत्येक जापानी का जीवन देश और सम्राट के लिए है। लड़कियों की शिक्षा में गृह कार्य को प्रमुख स्थान दिया जाता था। जापानी लोग समझते थे कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर है, अतः उन्हें गृह कार्य में विशेष रूप से निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 1902 तक भी लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। बाद में स्त्रियों के लिए पृथक कॉलेजों की स्थापना की गई और उन्हें यूनिवर्सिटियों में शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर दिया गया। आरंभिक शिक्षणालयों के लिए जापानियों ने अमेरिका को आदर्श रूप में स्वीकृत किया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने फ्रांस की यूनिवर्सिटियों का अनुकरण किया और शिल्प विषयक शिक्षा के लिए जर्मनी को अपना आदर्श बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही जापान में सब प्रकार के शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई और जापानी विद्यार्थियों के लिए अपने ही देश में सब प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना सुलभ हो गया। आइए आर्थिक उन्नति पर नज़र डालें। जापान की नई सरकार देश की आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थी। जब एक बार जापानी लोगों ने यह अनुभव कर लिया कि वे व्यावसायिक क्षेत्र में पाश्चात्य देशों के मुकाबले में बहुत पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने बड़ी तेजी के साथ यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक आविष्कारों और मशीनरी को अपनाना शुरू कर दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुत से नए कारखाने स्थापित किए और उनके लिए मशीनरी पाश्चात्य देशों से मंगाई गई। सरकार ने स्वयं अपने खर्च से विदेशों से मशीनरी मंगवानी शुरू की और नए कारखानों की स्थापना कर उन्हें धनपतियों को बेचना आरंभ किया। सरकार का यह यत्न था कि लोग कारखाने खोलने के लिए उत्साहित हो, इसलिए वह स्वयं कारखानों की इमारतों को बनवाती थी, स्वयं मशीनरी मंगाती थी और कारखानों को चालू हालात में लाकर उन्हें पूंजीपतियों को बेच देती थी। इस कारण जापान के अनेक संपन्न परिवार जहां सरकार के इन कारखानों का क्रय करने के लिए उत्साहित हुए, वहां साथ ही बहुत से लोगों ने स्वयं भी आधुनिक ढंग के कारखानों की स्थापना की। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय में जापान में व्यावसायिक क्रांति हो गई और वहाँ के विशालकाय कारखानों में कपड़ा, रेशम, लोहे का सामान आदि प्रचुर मात्रा में तैयार होने लगा। जापानी सरकार की यह नीति थी कि ऐसे व्यवसायों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए जो सैनिक शक्ति के लिए सहायक हो। इसलिए जापान में बहुत सी खानें खोदी गईं, लौह व्यवसाय को विशेष रूप से उन्नत किया गया और बारूद व विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया। 1890 तक जापान में यह दशा आ गई थी कि 250 से भी अधिक ऐसे कारखाने वहां कायम हो गए जिनमें भाप की शक्ति से सब कार्य होता था। 1890 के बाद तो जापान ने व्यावसायिक क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति की और 20वीं सदी के आरंभ तक वह आर्थिक उत्पत्ति में ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों का सफलता के साथ मुकाबला करने लगा। 1872 में जापान में पहली बार रेलवे का निर्माण हुआ था। यह पहली जापानी रेलवे लाइन टोक्यो से योकोहामा तक बनाई गई थी। 1894 तक 2118 मील लंबी रेलवे लाइनों ने जापान के विविध प्रदेशों में रेल का एक जाल सा बिछा दिया था। ये रेलवे लाइन जहां देश के आंतरिक व्यापार एवं व्यावसायिक उन्नति के लिए अत्यंत सहायक थी, वहां साथ ही राष्ट्रीयता के विकास में भी इसने बहुत सहायता की। अब जापान के विविध प्रदेशों व द्वीपों में निवास करने वाले लोगों के लिए यह सुगम हो गया था कि वे अपने देश में सर्वत्र यात्रा कर सकें और एक दूसरे के साथ परिचय प्राप्त कर सकें। जापान एक राष्ट्र है और उसके सब निवासी एक हैं। इस भावना को विकसित करने के में जापान के आवागमन के साधनों की उन्नति बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई। जापानी सरकार ने इसी समय डाकखाने के विभाग को भी विशेष रूप से उन्नत किया। 1868 में वहाँ टेलीग्राफ का पहली बार प्रवेश हुआ था। कुछ ही समय में जापान में सर्वत्र पोस्ट ऑफिसों की स्थापना हो गई। रेलवे और पोस्ट ऑफिस के विस्तार के साथ साथ जापानी सरकार ने जहाज़ों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया। 19वीं सदी के मध्य तक जापान को किसी ऐसे जहाज़ का परिचय भी नहीं था जो भाप की शक्ति से चलता हो। उसके अपने जहाज बहुत छोटे छोटे होते थे और वे तट के साथ साथ ही समुद्र में आया जाया करते थे, पर अब जापान ने भाप से चलने वाले विशाल जहाज़ों को अधिगत करना शुरू किया। शुरू में इन जहाज़ों को पाश्चात्य देशों से खरीदा गया, पर बाद में जापान में ही ऐसे यार्डों की स्थापना की गई जहाँ सब प्रकार के जहाज बड़ी संख्या में बनने शुरू हुए। 19वीं सदी के अंत तक यह दशा आ गई थी कि सामुद्रिक क्षेत्र में जापान संसार के अच्छे उन्नत देशों में गिना जाने लगा था और उसके जंगी जहाज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आतंक की चीज समझी जाने लगे थे। व्यावसायिक उन्नति के कारण जापान में पूंजीपति वर्ग का भी विकास हुआ। मित्सुई, मित्सुबिशी, सुमितोमो, यामुदा आदि अनेक परिवार व्यवसाय, महाजनी और व्यापार द्वारा अधिक समृद्ध हो गए और उनका प्रभाव जापान की राजनीति में भी बहुत अधिक बढ़ गया। 1868 में जापान से सामंत पद्धति का अंत किया गया था। 19वीं सदी के अंत तक वहां एक ऐसा समृद्ध व धनी वर्ग विकसित हो गया था जिसकी आर्थिक उन्नति के आधार व्यवसाय और व्यापार थे। पुराने सामंतों का स्थान अब इस पूंजीपति वर्ग ने ले लिया था। 1873 में जापान में पहले नेशनल बैंक की स्थापना हुई। 1879 तक केवल 6 साल के काल में जापान में इस प्रकार के बैंकों की संख्या 151 हो गई और ये बैंक करोड़ों का लेन देन करने लगे। 1885 में जापान में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई जो जापान का बैंक कहलाता है। बैंक के कारोबार का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पार्लियामेंट में अनेक कानून भी स्वीकृत किए गए। व्यावसायिक उन्नति, बैंकिंग का विकास और रेलवे आदि के निर्माण से जापान की आर्थिक दशा आमूलचूल रूप से परिवर्तित हो गई थी। अब उसे पाश्चात्य देशों के व्यापारियों से कोई भय नहीं रह गया था। आर्थिक क्षेत्र में वह उनका खुले तौर पर मुकाबला कर सकता था। अब जापान स्वयं इस चिंता में था कि अपने माल को अन्य देशों में बेचे और विदेशी व्यापार द्वारा अपने को समृद्ध करे। पाश्चात्य देशों ने विविध संधियों द्वारा जापान में व्यापार संबंधी जो विशेष अधिकार प्राप्त किए हुए थे वे सब अब निरर्थक होते जाते थे, और यही कारण है कि 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में इन संधियों को संशोधित व परिवर्तित कराने में जापान को कोई विशेष असुविधा नहीं हुई। 1868 के बाद सम्राट की सरकार ने किसानों की दशा को भी उन्नत करने के प्रश्न पर ध्यान दिया। सामंत पद्धति का अंत हो जाने के कारण अब किसानों की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छी हो गई थी। किसानों को यह अधिकार दिया गया कि वे जिस भूमि को जोतते और बोते हैं उस पर अपना स्वामित्व स्थापित कर सके और खेत पर अपने कब्जे का विक्रय भी कर सके। 1872 में किसानों का अपने खेतों पर स्वत्व स्थापित कर दिया गया। पुराने समय में सामंत लोग अपनी जागीरों की भूमि को जोतने वाले किसानों से उपज का एक निश्चित भाग लगान के रूप में लिया करते थे, पर अब सरकार ने उपज का भाग लेने के स्थान पर सिक्के के रूप में मालगुजारी लेना आरंभ कर दिया। किस खेत में कितनी फसल होती है इसका हिसाब करके उसकी मालगुजारी की मात्रा नियत कर दी गई। इस व्यवस्था से किसानों को जहां अनेक लाभ हुए वहां एक नुकसान भी हुआ। अब किसान इस बात के लिए विवश हो गए कि मालगुजारी की रकम को अदा करने के लिए अपनी फसल को मंडी में ले जाकर बेचे। फसल तैयार होने पर सब किसानों की यह कोशिश होती थी कि जल्दी से जल्दी मालगुजारी अदा करने के लिए अपनी उपज को बाजार ले जाएं। इससे चावल व अन्य अनाज की कीमतें गिरने लगी और बहुत से छोटे छोटे किसानों के लिए यह संभव नहीं रहा कि वे मालगुजारी दे चुकने के बाद अपने निर्वाह के लिए पर्याप्त अन्न बचा सके। इस कारण बहुत से किसान अपने खेतों को बेच देने के लिए विवश हो गए। इस अवसर से लाभ उठाकर बहुत से धनी लोगों ने गरीब किसानों की जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया और जमींदारों की एक ऐसी नई श्रेणी का विकास आरंभ हुआ जो अपने धन के जोर पर देहातों में अपने प्रभुत्व का प्रसार कर रही थी। इस समय जापान में व्यावसायिक क्रांति का आरंभ हो चुका था। बहुत से नए कल कारखानों की स्थापना हो रही थी और इनमें कार्य करने के लिए मजदूरों की मांग निरंतर बढ़ रही थी। बहुत से गरीबी किसान इस समय अपने कुल क्रमानुगत घरों को छोड़कर शहरों में आए और मजदूरी प्राप्त करके अपना निर्वाह करने लगे। पाश्चात्य देशों के समान जापान में भी अब मजदूर वर्ग का विकास आरंभ हुआ और व्यावसायिक क्रांति के कारण पूंजीपतियों और मजदूरों की जो समस्याएं यूरोप में उत्पन्न हुई थी वो जापान में भी प्रादुर्भूत होने लगी। बौद्ध धर्म का जापान में किस प्रकार प्रवेश हुआ यह आप जानते हैं। सम्राट की शक्ति की पुनः स्थापना के बाद जापान के प्राचीन परंपरागत धर्म सिंतो में नवजीवन का संचार हुआ, पर इसके कारण बौद्ध धर्म का ह्रास नहीं हो गया। सिंतो धर्म के जो तत्व इस समय प्रबल हुए वे जापान की बौद्ध जनता में प्राचीन विधि विधानों के प्रति निष्ठा और सम्राट को देवता के रूप में मानने की भावना में वृद्धि कर रहे थे। सिंतो सिद्धांतों के कारण जापान का बौद्ध धर्म अन्य देशों के बौद्ध धर्म से भिन्न रूप ग्रहण कर रहा था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जापान में क्रिश्चियनिटी के प्रचार को भी बल मिला। फ्रांस के रोमन कैथोलिक और अमेरिका के प्रोटेस्टेंट पादरियों ने वहां अनेक मिशनों की स्थापना की और इनके कारण अनेक जापानी लोग इस समय पाश्चात्य धर्म के प्रति भी आकृष्ट होने लगे। साम्राज्यवाद के मार्ग पर व्यावसायिक उन्नति और सैनिक दृष्टि शक्ति की दृष्टि से जापान अब पाश्चात्य देशों के समकक्ष खड़ा हो गया था। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वह भी यूरोप और अमेरिका का अनुसरण कर साम्राज्यवाद के मांग पर अग्रसर हो। 19वीं सदी की समाप्ति से पूर्व ही जापान ने कोरिया और चीन में अनेक युद्ध किए जिनके परिणाम स्वरूप फार्मोशा द्वीप पेस्काड्रिस द्वीप समूह उसकी अधीनता में आ गए। 20वीं सदी के आरंभिक भाग में उसके साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ और रूस को युद्ध में परास्त कर वह पूर्वी एशिया की प्रधान राजशक्ति बन गया। जापान 20वीं सदी के प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका आदि मित्र राज्यों के पक्ष में था जिसके कारण उसके साम्राज्य के विस्तार में बहुत सहायता मिली। इस समय जापान की गिनती संसार के सबसे शक्तिशाली राज्यों में की जाने लगी थी। 1930 के बाद उसने चीन में अपनी शक्ति का विस्तार आरंभ किया और 1939 से 45 के द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर कुछ समय के लिए उसके साम्राज्य की सीमा भारत के साथ आ लगी थी। जापान के उत्कर्ष का कारण वह आश्चर्यजनक व्यावसायिक व वैज्ञानिक उन्नति थी जो उसने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संपन्न की थी। शोगुनों के शासनकाल में जापान का सम्राट क्योतो में रहता था और शोगुन शासकों की राजधानी येदो नगरी थी। जब शोगुनों के शासन का अंत होने पर सम्राट ने राजशक्ति को अपने हाथों में लिया तो वह भी अपने दरबार के साथ योदो चलाया। इस समय योदो का नाम बदलकर टोक्यो रखा गया और धीरे धीरे वह न केवल जापान का अपितु एशिया का सबसे बड़ा नगर बन गया।